चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला अध्याय 16 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृष्ण के अधरों का अमृत पान। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने स्वयं कृष्ण प्रेम के अमृत का आस्वादन किया और फिर अपने भक्तों को उपदेश दिया कि उसका आस्वादन किस तरह करें। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें दिव्य ज्ञान में दीक्षित करने के लिए कृष्ण के प्रेमावेश के विषय में उन्हें उपदेश दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा महाप्रभु के समस्त भक्त वृंद की जय हो। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ सदैव प्रेम भक्ति में निमग्न रहते हुए जगन्नाथपुरी में रहे। अगले वर्ष हमेशा की तरह सब भक्त गण बंगाल से जगन्नाथपुरी गए और पिछले वर्षों की तरह वहां भक्तों तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का मिलाप हुआ। बंगाल के भक्तों के साथ कालिदास नाम के एक सज्जन आए। वे पवित्र कृष्ण नाम के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहते थे। कालिदास बहुत उन्नत भक्त थे किंतु थे सरल और उदार। वे अपने सारे काम काज करते समय कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहते थे। जब वह हंसी में पांसे खेलते तो भी वे हरे कृष्ण कहकर पांसा फेंकते थे। कालिदास रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा थे। वे आजीवन यहाँ तक कि वृद्धावस्था में भी वैष्णवों द्वारा छोड़े गए उच्चिष्ट को खाने का प्रयास करते। कालिदास ने बंगाल में जितने वैष्णव थे उन सबों का उच्चिष्ट खाया था। वे ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न समस्त वैष्णवों के पास जाते, चाहे वे नए भक्त हो या उन्नत भक्त हो, और उन्हें उत्तम खाद्य वस्तुएं भेंट करते थे। वे ऐसे वैष्णवों से जूठन मांगते और यदि उन्हें कुछ नहीं मिलता था तो वे छिप जाते थे। जब वैष्णव भोजन कर लेते और अपने पत्तल फेंक देते तो कालिदास छुपी जगह से बाहर निकल आते और पत्तलों को लेकर जूठन चाटते। वे शूद्र परिवारों में उत्पन्न वैष्णवों के भी घरों में भेंट लेकर जाते। तब वे छिप जाते और जब वे जूठन फेंकते तो उसे खाते। जड़ू ठाकुर नाम के एक महान वैष्णव थे जो बुई माली जाति के थे। कालिदास उनके घर अपने साथ आम लेकर गए। कालिदास ने वे आम जड़ू ठाकुर को भेंट किए और उन्हें नमस्कार किया। तब उन्होंने ठाकुर की पत्नी को भी नमस्कार किया। जब कालिदास जड़ू ठाकुर के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वे साधु पुरुष अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं। जो ही जड़ू ठाकुर ने कालिदास को देखा उन्होंने भी उसी तरह नमस्कार किया। कालिदास के साथ कुछ काल तक चर्चा करने के बाद जड़ू ठाकुर ने उनसे निम्नलिखित मधुर शब्दों में कहा, मैं नीच जाति का हूँ और आप मेरे अति सम्मानित अतिथि हैं। मैं किस तरह आपकी सेवा करूं? यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ भोजन ब्राह्मण के घर भेज दूं, जहां आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करें तो मैं अत्यंत सुख पूर्वक जी पाऊंगा। कालिदास ने उत्तर दिया, हे महोदय, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। यद्यपि मैं अत्यंत नीच तथा पापी हूँ, आपके दर्शन मात्र से मैं पवित्र हो गया हूँ। मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मेरा जीवन सफल हो गया है। हे महोदय, मेरी एक इच्छा है, आप मेरे सिर पर अपना पांव रखने की कृपा करें, जिससे आपके पांव की धूल मेरे सिर का स्पर्श कर सके। जड़ू ठाकुर ने उत्तर दिया, मुझसे इसके लिए कहना आपको शोभा नहीं देता। मैं अत्यंत निम्न जाति का हूँ, जबकि आप सम्माननीय धनी सज्जन हैं। तब कालिदास ने कुछ श्लोक सुनाए, जिन्हें सुनकर जड़ू ठाकुर अत्यंत सुखी हुए। कोई संस्कृत साहित्य में कितना ही विद्वान पंडित क्यों न हो, यदि वह शुद्ध भक्ति में नहीं लगा है तो वह मेरा भक्त नहीं माना जाता। किंतु यदि चंडाल परिवार में उत्पन्न कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है, जिसे सकाम कर्म या ज्ञान के माध्यम से भोग की इच्छा नहीं रहती, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। उसे सभी तरह का आदर दिया जाना चाहिए और वह जो भी दे उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्त मेरे ही समान पूज्य हैं। ब्राह्मण कुल में जन्मा और बारहों ब्राह्मण गुणों से संपन्न व्यक्ति योग्य होते हुए भी यदि कमलनाथ भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति नहीं करता, तो वह उस चंडाल के तुल्य भी नहीं होता, जो अपना मन, वचन, कर्म, धन तथा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर चुका है। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अथवा ब्राह्मण गुणों से युक्त होना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। यदि कोई स्वपच या चंडाल व्यक्ति भक्त होता है, तो वह न केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार कर देता है। जबकि अभक्त ब्राह्मण ब्राह्मण गुणों से युक्त होते हुए भी अपने आप को भी पवित्र नहीं कर सकता, अपने परिवार की बात तो दूर रही। हे प्रभु, जो भी व्यक्ति आपके पवित्र नाम को सदा अपनी जिह्वा पर रखता है, वह दीक्षित ब्राह्मण से भी बढ़कर है। भले ही उसने स्वपच चंडाल कुल में जन्म लिया हो और भौतिकता की दृष्टि से मनुष्यों में अधम हो, फिर भी वह महिमा मंडित है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने की यही तो अद्भुत शक्ति है। जो पवित्र नाम का जप करता है, समझ लो कि वह सभी तरह की तपस्याएं कर चुका है, वह सारे वेदों का अध्ययन कर चुका है, उसने वेद वर्णित सारे महान यज्ञ संपन्न कर लिए हैं और उसने समस्त तीर्थ स्थलों में पहले ही स्नान कर लिया है और सचमुच वही आर्य है। श्रीमद् भागवत शास्त्र में इन उद्धरणों को सुनकर जड़ू ठाकुर ने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है, क्योंकि यह शास्त्र का कथन है, किंतु यह उसके लिए सत्य है जो कृष्ण भक्ति में वास्तव में अग्रसर हो। ऐसा पद अन्यों के लिए उपयुक्त हो सकता है, किंतु मुझ में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। मैं तो नीच जाति का हूँ और मुझ में रंच मात्र भी कृष्ण भक्ति नहीं है। कालिदास ने फिर से जरूर ठाकुर को नमस्कार किया और उनसे जाने की अनुमति मांगी। उनके जाते ही संत जरूर ठाकुर उनके पीछे गए। कालिदास को विदा करने के बाद जरूर ठाकुर अपने घर लौट आए और अनेक स्थानों पर अपने पद चिन्ह छोड़ते आए जो स्पष्ट दृष्टि गोचर हो रहे थे। कालिदास ने उन चरण चिन्हों की धूल अपने सारे शरीर पर पोत ली। तब वे जरूर ठाकुर के घर के निकट एक स्थान में छिप गए। घर लौट कर जरूर ठाकुर ने कालिदास द्वारा भेंट किए गए आमों को देखा। उन्होंने मन ही मन उन्हें कृष्ण चंद्र को अर्पित कर दिया। तब जरूर ठाकुर की पत्नी ने केले की पत्ती तथा छाल से लपेटे आमों को निकाला और उन्हें जरूर ठाकुर को दिया, जिन्होंने उनको चूसना प्रारंभ कर दिया। जब वे उन्हें चूस चुके तो उन्होंने गुठली और छिलके को केले के पत्ते पर छोड़ दिया और उनकी पत्नी अपने पति को खिलाने के बाद स्वयं खाने लगी। जब वह खा चुकी तो उसने केले के पत्तों और छाल में गुठलियां तथा छिलके ले लिए और उन्हें ले जाकर कूड़े दान में फेंक दिया। कालिदास ने केले के पत्ते तथा आम की गुठली और छिलके को चूसा। चूसते समय वे प्रसन्नता के मारे प्रेमाविष्ट हो गए। इस तरह कालिदास ने बंगाल में निवास करने वाले सारे वैष्णवों का जूठन खाया। जब यही कालिदास जगन्नाथपुरी अर्थात नीलाचल आए तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर महान कृपा की। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन नियमित रूप से जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाते और उस समय उनका निजी सेवक गोविंद उनका कमंडल लेकर उनके साथ साथ जाता। सिंह द्वार के उत्तर में दरवाजे के पीछे से 22 सीढ़ियां मंदिर को जाती हैं और इन सीढ़ियों के नीचे एक गड्ढा है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी गड्ढे में अपने पांव धोया करते और उसके बाद भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मंदिर में प्रवेश करते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद को आदेश दे रखा था कि उनके पाद प्रक्षालित जल को कोई न ले। महाप्रभु की सख्त आज्ञा के कारण कोई जीव यह जल नहीं ले सकता था, किंतु उनके कुछ अंतरंग भक्त किसी न किसी युक्ति से इसे ले लेते। एक दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु उसी स्थान पर अपने पांव धो रहे थे तो कालिदास वहां आए और जल लेने के लिए अपनी अंजुली बढ़ाई। कालिदास ने एक अंजुली पानी पिया, फिर दूसरी और तीसरी अंजुली भर कर भी पानी पिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने और अधिक पीने से उन्हें मना कर दिया। अब फिर से इस तरह मत करना, मैंने यथा संभव तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए वे जान गए कि कालिदास के अंतर में वैष्णवों के प्रति पूरी श्रद्धा है। इसी गुण के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ऐसी कृपा से तुष्ट किया जो अन्य किसी के लिए प्राप्त नहीं है। दक्षिण दिशा में 22 सीढ़ियों के पीछे ऊपर की ओर नरसिंह देव के अर्चा विग्रह हैं, जो सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर जाते समय बाई ओर पड़ती है। श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर जाते समय अपने बाएं पड़ने वाले नरसिंह भगवान के अर्चा विग्रह को नमस्कार करते समय वे बारंबार निम्नलिखित श्लोक पढ़ते। हे नरसिंह देव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप प्रहलाद महाराज को हर्ष प्रदान करने वाले हैं। आपके नाखूनों ने हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल को पत्थर काटने की छेनी के समान विदीर्ण कर डाला था। इधर भगवान नरसिंह हैं, उस और भी भगवान नरसिंह हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ भगवान नरसिंह देव को देखता हूँ। वे मेरे हृदय के बाहर और भीतर हैं, इसलिए मैं आदि भगवान नरसिंह देव की चरण ग्रहण करता हूँ, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन किए। तब अपने घर आकर दोपहर के कृत्य करने के बाद उन्होंने भोजन किया। कालिदास श्री चैतन्य महाप्रभु के शेष प्रसाद की आशा में दरवाजे के बाहर खड़े थे। यह जानते हुए महाप्रभु ने गोविंद को संकेत किया। गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे संकेतों को जानता था, इसलिए उसने तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के भोजन का शेष प्रसाद कालिदास को दे दिया। वैष्णव के भोजन का शेष ग्रहण करना इतना महत्वपूर्ण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी सर्वोच्च कृपा कालिदास पर अर्पित करने के लिए प्रेरित हुए। इसलिए घृणा तथा संकोच को त्याग कर वैष्णवों के भोजन का शेष खाने का प्रयास करो, क्योंकि इस तरह से तुम्हें जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन का शेष महाप्रसाद कहलाता है, और जब यह महाप्रसाद किसी भक्त द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह शेष महाप्रसाद बन जाता है। भक्त के चरणों की धूल, भक्त के चरणों का प्रक्षालित जल तथा भक्त द्वारा छोड़ा गया शेष भोजन, ये तीन अत्यंत शक्तिशाली वस्तुएं हैं। इन तीनों की सेवा से मनुष्य को कृष्ण प्रेम का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। सारे प्रामाणिक शास्त्रों में बारंबार पुकार पुकार कर इसकी घोषणा की गई है। इसलिए हे प्रिय भक्तों, कृपया मुझसे यह सुन लो, क्योंकि मैं बारंबार आग्रह पूर्वक कहता हूँ कि इन तीनों में श्रद्धा रखो और बिना संकोच के इनकी सेवा करो। इन तीनों से मनुष्य को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। यह भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। कालिदास इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी अर्थात नीलाचल में रहे और उन्होंने कालिदास पर अप्रत्यक्ष रीति से महती कृपा प्रदान की। इस वर्ष शिवानंद सेन अपने साथ अपनी पत्नी तथा अपने सबसे छोटे पुत्र पुरी दास को भी ले आए। शिवानंद सेन अपने पुत्र को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने उनके निवास पर गए। उन्होंने अपने पुत्र से महाप्रभु के चरण कमलों पर सादर नमस्कार करवाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस बालक से कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए बारंबार कहा, किंतु बालक ने पवित्र नाम का उच्चारण नहीं किया। यद्यपि शिवानंद सेन ने उस बालक से कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करवाने का काफी प्रयास किया, किंतु बालक ने नामोच्चारण नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने तो सारे जगत को कृष्ण नाम लेने के लिए प्रेरित किया। मैंने वृक्षों तथा अचर वनस्पतियों को भी पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया, किंतु मैं इस बालक से कृष्ण का नाम नहीं कहलवा सका। यह सुनकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप उसे कृष्ण नाम में दीक्षित कर चुके हैं, किंतु मंत्र प्राप्त करने के बाद वह सबों के समक्ष उसे व्यक्त नहीं करेगा। यह बालक मन ही मन मंत्र का जप करता है, उसे उच्च स्वर से नहीं कहता। जहाँ तक मेरा अनुमान है, यही उसका मनोभाव है। एक अन्य दिन जब महाप्रभु ने उस बालक से कहा, हे पुरी दास, तुम सुनाओ, तो उसने निम्नलिखित श्लोक बनाकर सबों के सामने व्यक्त किया। श्री कृष्ण वृंदावन की गोपांगनाओं के कानों के लिए नीले कमल के फूल के तुल्य हैं, वे आंखों के अंजन हैं, वक्ष स्थल के लिए इंद्र नील मणि की माला है और उनके आभूषण हैं। उन भगवान श्री हरि कृष्ण की जय हो। यद्यपि वह बालक केवल 7 वर्ष का था और उसे कोई शिक्षा नहीं मिली थी, फिर भी उसने इतना अच्छा श्लोक रचा, इससे हर व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी कृपा की महिमा ही है, जिसका अनुमान ब्रह्मा जी एवं देवता गण भी नहीं लगा सकते। सारे भक्त लगातार 4 महीने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। तब महाप्रभु ने उन्हें बंगाल लौट जाने की आज्ञा दी, इसलिए वे लौट गए। जब तक ये भक्त नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी में रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य चेतना बनाए रखी, किंतु उनके जाते ही महाप्रभु पुनः कृष्ण प्रेम के उन्माद में खो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु रात दिन कृष्ण के सौंदर्य सुगंध तथा रस का प्रत्यक्ष आस्वादन करने लगे, मानो वे कृष्ण का प्रत्यक्ष स्पर्श कर रहे हों। एक दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए गए, तो सिंह द्वार के द्वारपाल ने उनके पास पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया। महाप्रभु ने उससे पूछा, मेरे प्राण नाथ कृष्ण कहाँ हैं? मुझे कृष्ण दिखलाओ। यह कहकर उन्होंने द्वारपाल का हाथ पकड़ लिया। द्वारपाल ने उत्तर दिया, महाराज नंद के पुत्र यही हैं। कृपया मेरे साथ आए, मैं आपको दर्शन करा दूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने द्वारपाल से कहा, तुम मेरे मित्र हो, कृपया मुझे मेरे हृदय के स्वामी को दिखला दो। इतना कहने के बाद वे दोनों जगमोहन नामक स्थान पर गए, जहां सभी लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन पाते हैं। द्वारपाल ने कहा, वह देखो श्री पुरुषोत्तम वहां है, यहां से आप जी भरकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े रहे और उन्होंने वहां से जगन्नाथ जी को देखा, किंतु जैसे ही उन्होंने देखा जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण बन गए, जो अपने मुख में वंशी धारण किए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी पुस्तक गौरांग स्तव कल्प वृक्ष में इस घटना का बहुत सुंदर वर्णन किया है। हे द्वारपाल, हे मेरे मित्र, मेरे प्राण धन कृष्ण कहाँ है? मुझे उनका दर्शन शीघ्रता से कराओ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्मत्त की तरह उस द्वारपाल को इन शब्दों से संबोधित किया। द्वारपाल ने उनका हाथ पकड़कर शीघ्रता में उत्तर दिया, आइए आप अपने प्रियतम को देखिए, वे श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में उदित हो और मुझे भी उन्मत्त बनाए। तभी भगवान जगन्नाथ को गोपाल वल्लभ भोग नामक भोजन अर्पित किया जा रहा था और शंख ध्वनि तथा घंटे की ध्वनि के साथ आरती की जा रही थी। जब आरती समाप्त हो गई तो प्रसाद बाहर लाया गया और भगवान जगन्नाथ के सेवक गण कुछ प्रसाद लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु को देने आए। भगवान जगन्नाथ के सेवकों ने सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु को माला पहनाई और तब उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। यह प्रसाद इतना अच्छा था कि स्वाद की बात छोड़ दे, इसकी सुगंध ही मन को उन्मत्त बनाने वाली थी। यह प्रसाद बहुमूल्य वस्तुओं से बना हुआ था, इसलिए सेवक गण उसका थोड़ा सा अंश श्री चैतन्य महाप्रभु को खिलाना चाह रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद का थोड़ा अंश चखा, शेष भाग गोविंद ने अपने वस्त्र के छोर में बांध लिया। यह प्रसाद श्री चैतन्य महाप्रभु को अमृत से करोड़ों गुना अधिक स्वादिष्ट लगा, अतएव वे पूर्णतया तुष्ट हो गए। उन्हें रोमांच हो आया और उनके नेत्रों से अविरत अश्रु धारा बहने लगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया, इस प्रसाद में ऐसा स्वाद कहाँ से आया? निश्चय ही कृष्ण के होठों के अमृत के स्पर्श से ऐसा हुआ है। यह समझकर श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के प्रेमावेश का अनुभव हुआ, किंतु भगवान जगन्नाथ के सेवकों को देखकर उन्होंने अपने आप को संभाला। महाप्रभु बारंबार कहते रहे, बहुत ही सौभाग्य से भगवान को अर्पित प्रसाद का एक कण मिल पाता है। जगन्नाथ मंदिर के सेवकों ने पूछा, इसका अर्थ क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, ये कृष्ण द्वारा किए गए भोजन के शेष हैं, अतएव उनके होठों के स्पर्श से अमृत में परिणत हो गए हैं। यह स्वर्गिक अमृत से बढ़कर है और ब्रह्मा जैसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कृष्ण द्वारा छोड़ा गया भोजन सेला कहलाता है। जो इसका अल्पांच भी प्राप्त कर लेता है उसे अत्यंत भाग्यशाली मानना चाहिए। जो केवल सामान्य भाग्यवान है उसे ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। केवल वे ही ऐसा शेष प्रसाद पा सकते हैं जिन पर कृष्ण की पूर्ण कृपा हो। सुकृति शब्द कृष्ण कृपा से संपन्न होने वाले पुण्य कर्मों का द्योतक है। जो ऐसी कृपा प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली होता है वही भगवान के भोजन का शेष पाता है और धन्य हो जाता है। यह कह कर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे सेवकों को विदा कर दिया। फिर उपल भोग उत्सव के दर्शन करने के उपरांत वे अपने स्थान पर लौट आए। दोपहर के कृत्य पूरे करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोपहर का भोजन किया, किंतु वे लगातार कृष्ण के शेष प्रसाद का स्मरण करते रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने बाह्य कार्य तो संपन्न करते किंतु उनका मन प्रेम से पूरित रहता। वे बड़ी कठिनाई से अपने मन को रोक पाते तो भी वह सदैव गहन भाव से अभिभूत हो उठता। अपने संध्या कर्म समाप्त कर लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु एकांत स्थान में अपने निजी संगियों के साथ बैठ गए और अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण की लीलाओं की चर्चा की। श्री चैतन्य महाप्रभु के संकेत पर गोविंद भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ले आया। महाप्रभु ने कुछ प्रसाद परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती के लिए भिजवाया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद का कुछ अंश रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा अन्य सारे भक्तों को दिया। जब उन सबों ने प्रसाद की असाधारण मधुरता तथा सुगंध का आस्वादन किया तो हर एक का मन आश्चर्यचकित हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चीनी, कपूर, काली मिर्च, इलायची, लौंग, मक्खन, मसाले तथा मुलेठी, ये सभी तो भौतिक वस्तुएं हैं। इन सभी भौतिक वस्तुओं का स्वाद प्रत्येक ने पहले लिया है। महाप्रभु ने आगे कहा, किंतु इन वस्तुओं में असामान्य स्वाद तथा सुगंध है। जरा चखो तो और अंतर का अनुभव करके देखो। स्वाद के अतिरिक्त सुगंध तक मन को भाती है और वह उसके आगे अन्य किसी भी मधुरता को भुला देती है। इसलिए इससे यह समझना चाहिए कि इन सामान्य वस्तुओं में कृष्ण के होठों के दिव्य अमृत का स्पर्श हुआ है, जिससे इनमें उन होठों के सारे आध्यात्मिक गुण आ गए हैं। कृष्ण के होठों के गुण है असाधारण अत्यंत मोहक सुगंध तथा स्वाद, जो अन्य सारे अनुभवों को विस्मृत करा देते हैं। यह प्रसाद अनेक पुण्य कार्यों के फल स्वरूप ही प्राप्त हुआ है। अब इसका अतीव श्रद्धा तथा भक्ति के साथ आस्वादन करो। सबों ने उच्च स्वर से हरि नाम का कीर्तन करते हुए प्रसाद का आस्वादन किया। उसका आस्वादन करते ही उनके मन प्रेमावेश से उन्मत्त हो उठे। प्रेमावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को कुछ श्लोक सुनाने का आदेश दिया। तब रामानंद राय इस प्रकार बोले, हे दानवीर, कृपया हमें अपने होठों का अमृत प्रदान करें। यह अमृत भोग की कामेच्छाओं को बढ़ाता है और भौतिक जगत में शोक को कम करता है। कृपया हमें अपने उन होठों का अमृत दे जिनका स्पर्श आपकी दिव्य ध्वनि करने वाली वंशी करती है, क्योंकि वह अमृत सारे मनुष्यों को उनकी अन्य सारी आसक्तियों को भूल जाने के लिए प्रेरित करता है। रामानंद राय द्वारा यह श्लोक सुनाने पर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक तुष्ट हुए। तब उन्होंने स्वयं निम्नलिखित श्लोक सुनाया, जिसे श्रीमती राधा रानी ने अत्यंत उत्कंठा में कहा था। हे सखी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के होठों का अद्वितीय अमृत अनेकानेक पुण्य कर्मों के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। वृंदावन की सुंदर गोपियों के लिए वह अमृत अन्य सारे स्वादों की इच्छा को दूर करता है। मदन मोहन सदैव पान खाते हैं, जो स्वर्ग के अमृत को भी मात करता है। वे निश्चित रूप से हमारी जीभ की इच्छाओं को वर्धित कर रहे हैं। यह कह कर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश से विह्वल हो गए। उन्मत्त की तरह बातें करते हुए वे इन दोनों श्लोकों का अर्थ बतलाने लगे। भगवान चैतन्य ने श्रीमती राधा रानी के भाव में कहा, हे प्रेमी, आपके दिव्य होठों के कुछ गुणों का मुझे वर्णन करने दो। वे हर एक के मन तथा तन को चंचल बनाते हैं। वे भोग की कामेच्छा को बढ़ाते हैं। वे भौतिक सुख और शोक के भार को नष्ट कर देते हैं और सारे भौतिक स्वादों को भुलवा देते हैं। सारा संसार उनके वशीभूत हो जाता है। वे विशेषतया स्त्रियों की लज्जा, धर्म तथा धैर्य को भी नष्ट कर देते हैं। निसंदेह वे समस्त स्त्रियों के मन में उन्मत्तता को बढ़ावा देते हैं। आपके होंठ जीभ के लोभ को बढ़ाकर उसे अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए हम देखती हैं कि आपके दिव्य होंठ हमें सदैव व्याकुल बनाते हैं। हे कृष्ण, चूंकि आप पुरुष हो, इसलिए यह कोई असाधारण बात नहीं है कि आपके होठों का आकर्षण स्त्रियों के मन को शुभ करता है। किंतु मुझे यह कहते लज्जा आती है कि आपके होठ कभी कभी आपकी वंशी तक को आकृष्ट करते हैं, जो एक पुरुष माना जाता है। वह तुम्हारे होठों के अमृत का पान करना पसंद करता है, इसलिए उसे भी अन्य सारे स्वादों की विस्मृति हो जाती है। आपके होठों द्वारा चेतन जीवों के अतिरिक्त कभी कभी अचेतन पदार्थ भी चेतन बना दिए जाते हैं, इसलिए आपके होंठ बहुत बड़े जादूगर हैं। विडंबना तो यह है कि यद्यपि आपकी वंशी मात्र सूखा काष्ठ है, किंतु आपके होंठ उसे अपना अमृत पिलवाते हैं। वे शुष्क काष्ठ की बनी वंशी में मन तथा इंद्रियां उत्पन्न करते हैं और उसे दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। यह वंशी वेणु अत्यंत दृष्ट पुरुष है, जो अन्य पुरुष के होठों के स्वाद का बारंबार पान करता है। यह वंशी रूपी पुरुष अपने गुणों का विज्ञापन करते हुए गोपियों से कहता है, हे गोपियों, यदि तुम्हें स्त्रियां होने का गर्व है तो आगे आओ और अपनी संपत्ति का भगवान के होंठों के अमृत का भोग करो। इस पर वंशी ने क्रुद्ध होकर मुझसे कहा, तुम अपनी लाज भय तथा धर्म छोड़ दो और आकर कृष्ण के होंठों का पान करो। इस शर्त पर मैं उनके प्रति अपनी अनुरक्ति छोड़ूंगी, किंतु यदि तुम अपनी लाज तथा भय नहीं छोड़ सकती तो मैं निरंतर कृष्ण के होंठों का अमृत पान करती रहूंगी। मैं कुछ कुछ भयभीत हूँ, क्योंकि तुम्हें भी उस अमृत को पीने का अधिकार है, लेकिन अन्यों को मैं तिनके के बराबर मानती हूँ। कृष्ण के होंठों का अमृत उनकी वंशी ध्वनि के साथ मिलकर तीनों लोकों के सारे लोगों को आकृष्ट करता है, किंतु यदि हम गोपियां धर्म का आदर करने के कारण धैर्य धारण किए रहती हैं, तो यह वंशी हमारी आलोचना करती है। आपके होंठों का अमृत तथा आपकी वंशी की ध्वनि दोनों मिलकर हमारे कमर पट्टे को ढीला कर देते हैं और हमें अपने गुरु जनों के समक्ष भी अपनी लज्जा तथा धर्म को छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मानो वे हमारे केश पकड़कर बलपूर्वक हमें ले जाते हैं और आपकी दासी बनने के लिए हमसे आत्मसमर्पण कराते हैं। ये घटनाएं सुनकर लोग हम पर हंसते हैं। इस तरह हम पूरी तरह वंशी के अधीन हो गई हैं। यह वंशी मात्र बांस की सूखी लाठी है, किंतु यह हमारी स्वामिनी बनकर इतने प्रकार से हमारा अपमान करती है कि हम दुखद स्थिति के लिए बाध्य हो जाती हैं। भला इसको सहन करने के अतिरिक्त हम कर भी क्या सकती हैं? जब चोर दंडित हो रहा हो तब चोर की माता न्याय के लिए उच्च स्वर से रो नहीं सकती, इसलिए हम मात्र मौन रह जाती हैं। इन होंठों की यही रीति है। जरा अन्य अन्यायों का तो विचार करो। इन होंठों को जो भी वस्तु छू जाती है, चाहे भोजन पेय या पान ही क्यों न हो, अमृत के समान भन जाती है। तब वह वस्तु कृष्ण फेला अर्थात कृष्ण का शेष प्रसाद कहलाती है। अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी देवता ऐसे भोजन के शेष का एक छोटा सा अंश तक नहीं पा सकते। जरा उस शेष प्रसाद के गर्व की कल्पना तो करो। जिस व्यक्ति ने अनेका अनेक जन्मों तक पुण्य किए हैं और इस तरह से भक्त बन गया है, वही ऐसे भोजन का शेष प्राप्त कर सकता है। कृष्ण द्वारा चबाया गया पान अमूल्य है और उनके मुख से ऐसे चबाए हुए पान का शेष अमृत का सार कहलाता है। जब गोपियां इस उच्चिष्ट को ग्रहण करती हैं, तो उनके मुख कृष्ण के पीक दान बन जाते हैं। इसलिए हे कृष्ण, आपने जितनी चालें इतनी दक्षता से चला रखी हैं, उन सबों को त्याग दो। अपनी वंशी की ध्वनि से गोपियों के प्राण लेने का प्रयास मत करो। अपनी हंसी तथा उपहास से आप स्त्रियों का वध करने के उत्तरदायी बन रहे हो। आपके लिए अच्छा होगा कि हमें अपने होंठों के अमृत का दान देकर हमें तुष्ट करो। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह बातें कर रहे थे तब उनका मन बदल गया, उनका क्रोध शांत हो गया, किंतु उनका मानसिक क्षोभ बढ़ गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, कृष्ण के होठों का यह अमृत प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, किंतु यदि किसी को यह थोड़ा सा भी मिल जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जब इस अमृत को पीने के लिए समर्थ व्यक्ति इसका पान नहीं करता तो वह निर्लज व्यक्ति व्यर्थ ही जीवन धारण करता है। ऐसे लोग भी हैं जो उस अमृत को पीने के योग्य नहीं हैं, फिर भी वे उसे लगातार पीते हैं, जबकि कुछ ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जो उसे कभी नहीं पाते और ललचाते हुए मर जाते हैं। इससे यह समझ लेना होगा कि ऐसे अयोग्य व्यक्ति ने किसी तपस्या के बल पर कृष्ण के होठों का अमृत प्राप्त किया होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुनः रामानंद राय से कहा, कृपया कुछ कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। स्थिति समझते हुए रामानंद राय ने गोपियों के निम्नलिखित वचन सुनाए, हे गोपियों, इस वंशी ने स्वतंत्र रूप से कृष्ण के होठों का अमृत पान करने के लिए तथा वास्तव में जिन गोपियों के निमित्त यह अमृत है उन्हें केवल थोड़ा सा अवशिष्ट दिलाने के लिए कौन से पुण्य कर्म किए होंगे। वंशी के पूर्वज बांस के वृक्षों ने प्रसन्नता के आंसू बहाए। उसकी माता नदी जिसके किनारे बांस उगे थे हर्ष का अनुभव करती है, इसलिए उसके शरीर में खिले हुए कमल पुष्प रोमांच खड़े हुए रोम की तरह लग रहे हैं। इस श्लोक का पाठ सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और अत्यंत चंचल मन से उन्मत्त व्यक्ति की तरह इसका अर्थ ऐसे करने लगे। कुछ गोपियों ने अन्य गोपियों से कहा, जरा वजेंद्र नंदन कृष्ण की आश्चर्यजनक लीलाओं को तो देखो, वे निश्चित रूप से वृंदावन की सारी गोपियों के साथ विवाह करेंगे। इसीलिए गोपियां निश्चिंत हैं कि कृष्ण के होठों का अमृत उनकी निजी संपत्ति है और इसे कोई दूसरा नहीं भोग सकता। हे गोपियों, ठीक से विचार करो कि इस वंशी ने अपने विगत जीवन में कितने पुण्य कर्म किए होंगे। हम नहीं जानती कि उसने कितने तीर्थों का भ्रमण किया, कौन सी तपस्या की अथवा कौन से सिद्ध मंत्र का जप किया। यह वंशी सर्वथा अयोग्य है क्योंकि यह केवल जड़ भांत का खंड है। इतना ही नहीं, यह पुरुष जाति की है, फिर भी यह वंशी कृष्ण के होठों के उस अमृत का पान कर रही है जो प्रत्येक प्रकार के वर्णन योग्य अमृत की मधुरता को लांघने वाला है। गोपियां उस अमृत की आशा में ही जीवित हैं। यद्यपि कृष्ण के होठों का अमृत एकमात्र गोपियों का धन है, किंतु यह नगण्य लाठी जैसी वंशी बलपूर्वक उस अमृत का पान कर रही है और गोपियों को भी पीने के लिए उच्च स्वर से निमंत्रण दे रही है। जरा इस वंशी की तपस्या तथा सौभाग्य के बल को तो देखो, बड़े बड़े भक्त तक वंशी द्वारा कृष्ण के होंठों का अमृत पान किए जाने के बाद ही उस अमृत का पान करते हैं। जब कृष्ण यमुना तथा मानस गंगा जैसी विश्व को पवित्र करने वाली नदियों में स्नान करते हैं, तब वे नदियां लोभ तथा हर्ष के साथ उनके होंठों के अमृतमय रस के उच्चिष्ट का पान करती हैं। इन नदियों के अतिरिक्त ये वृक्ष जो उनके किनारों पर महामुनियों की तरह खड़े हैं और सारे जीवों का कल्याण करने में लगे हैं, वे अपनी जड़ों से नदी के जल को खींचकर कृष्ण के होठों के अमृत का पान करते रहते हैं। हम नहीं समझ पाती कि वे इस तरह क्यों पान करते हैं। यमुना तथा गंगा नदियों के किनारे के वृक्ष सदैव प्रसन्न रहते हैं। वे अपने फूलों से हंसते और झरते मधु के रूप में अश्रु गिराते प्रतीत होते हैं। जिस तरह वैष्णव पुत्र या पौत्र के पूर्वज दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, उसी तरह ये वृक्ष भी आनंदित हैं, क्योंकि वंशी इनके परिवार की सदस्य है। गोपियों ने विचार किया, यह वंशी अपने पद के सर्वथा अयोग्य है। हम यह जानना चाहती हैं कि इस वंशी ने किस तरह की तपस्या की है, जिससे कि हम भी वही तपस्या कर सकें। यद्यपि यह वंशी अयोग्य है, किंतु वह कृष्ण के होठों का अमृत पान कर रही है। यह देखकर हम योग्य गोपियां दुख के मारे मरी जा रही हैं। इसलिए हमें वंशी द्वारा विगत जीवन में की हुई तपस्या पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार उन्मत्त पुरुष की तरह बातें करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए। वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय इन अपने दो मित्रों के संग कभी नृत्य करते, कभी गाते तो कभी प्रेमावेश में मूर्छित हो जाते। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिन तथा अपनी रातें इसी प्रकार बिताते। स्वरूप रूप सनातन तथा रघुनाथ दास की कृपा की आशा करते हुए तथा उनके चरण कमलों को सिर पर धारण करते हुए मैं अत्यंत पतित कृष्ण दास श्री चैतन्य चरिता अमृत महाकाव्य का गायन कर रहा हूँ, जो कि दिव्य आनंद रूपी अमृत से भी मधुर है। इस प्रकार श्री चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृष्ण के अधरों का अमृत पान शीर्षक 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम।